ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव च्योफेल बार्तोशेवस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में रूस द्वारा परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को राजी करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बार्तोशेवस्की ने माना है कि वैश्विक शांति प्रयासों में भारत की भूमिका रही है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। रूस ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के लिए रविवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की योजना की घोषणा की थी। भूमि और ऊर्जा संयंत्रों पर बातचीत वार्ता के प्रमुख विषयों में शामिल रहेंगे। गजा पर कल रात हुए इजरायली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 400 हो गई है। फलस्तीन ने कहा है कि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के विफल होने के बाद यह हमला हुआ है। हमास और इजरायल के बीच 19 जनवरी के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। इसी दिन इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू हुआ था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को मान्यता दिए जाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र में उन्होंने कहा कि एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था की उपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। श्री जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत न्यूजीलैंड आर्थिक मंच में कहा कि यदि दोनों देश पूरक अर्थव्यवस्थाओं की भावना से काम करें तो अगले 10 वर्ष में 10 गुना वृद्धि हासिल कर सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार मणिपुर में शांति और खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर के प्रति अधिक संवेदनशील है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों के पास आकस्मिक कोष की व्यवस्था है जिसे वे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मणिपुर के पास कभी इस प्रकार का कोई कोष नहीं रहा है, इसलिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे अच्छी वित्तीय स्थिति में है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश में 2020 से यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ये अन्य देशों की तुलना में काफी किफायती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। लोकसभा में श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान देश की विविधता में एकता का अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में टीबी उन्मूलन के समाधान के लिए भारत नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन का उद्देश्य 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना है। सुश्री पटेल ने कहा कि भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए बहुक्षेत्रीय नवाचार संचालित दृष्टिकोण अपनाया है। बम्बई शेयर बाजार का संविदय सूचकांक आज 1131 अंक बढ़कर 75,301 पर बंद हुआ। निफ्टी 325 अंक बढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुश विलमोर और सुनीता विलियम्स आज देर रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।